श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्यवचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल ही होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम लय व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने 26 अध्याय का अध्ययन कर लिया है और आज हम उसकी आखिरी अध्याय 27 पर विचार करेंगे और इसमें हम देखेंगे शर्तों के प्रति समर्पण और मनन। करोगे तो आशीष पाओगे और नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। यह तो थी परमेश्वर की शर्तें जिनके आधार पर इसराइल प्रतिज्ञा के देश में वास करेगा। अब यदि वे कह दें अर्थात मन्नत मान लें या किसी बात का समर्पण कर दें तो क्या होगा, उनका विधि विधान का क्या होगा? प्रिय मित्र, इस अध्याय को पढ़ते समय मन में विचार आता है कि यहाँ इस अध्याय का क्या उद्देश्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लय व्यवस्था की पुस्तक का परिशिष्ट है। सब व्याख्या करने वालों ने इस पर ध्यान दिया है और कुछ लोग तो इसे इस पुस्तक की मुख्य समस्या भी मानते हैं। सीस, जो एक विद्वान है, इसे लय व्यवस्था का भाग ही नहीं मानते। डॉक्टर लांगली इसे परिशिष्ट मानते हैं। यद्यपि इस अध्याय की विशेष वस्तु अतिरिक्त एवं संदर्भ रहित है, मुझे तिल का पहाड़ बनाने में बुद्धिमानी दिखाई नहीं देती और मेरे विचार में इस अध्याय को पुस्तक के अंत में रखने का एक विशेष उद्देश्य है। डॉक्टर केलांग आत्मिक अंतर्दृष्टि से अनुभव करते हैं कि पूर्व का विवरण अनिवार्यता है तो यह स्वेच्छा से है और यह वास्तव में उपासना की इस पुस्तक की उपयुक्त परिकाष्ठा है। इसी प्रकार योहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 21 20वें अध्याय की परिकाष्ठा रचता है, जहाँ पुनरुत्थित मसीह अर्थात जी उठे मसीह अपने शिष्यों पर प्रकट होते हैं और उन्हें संसार में भेजते हैं। एक मिनट रुकिए, अध्याय 21 में उसके पास शमौन पत्रस के लिए एक संदेश है, तू मुझसे प्रेम करता है तू मेरी भेड़ों को चरा। यह स्वेच्छा के निमित्त ऐच्छिक विषय है जिसका मूल आधार प्रेम है, यह परमेश्वर की विधि है। मित्रों, शब्दों की एक विशेषता यह है कि वे ऐच्छिक हैं। ऐच्छिक का मतलब यहाँ पर यह है कि वे करने की इच्छा रखते हैं, वे आज्ञाओं, संस्कारों, आदेशों की अनुवर्ती क्रिया है। यह परमेश्वर के पहले मिल की यात्रा के पश्चात स्वैच्छिक यात्रा है जो अनिवार्य है। वे एक कृतज्ञता से पूर्ण हृदय के आभार व्यक्ति हैं। फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा की जाए तो उसे पूरा करना एक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। उद्धार प्राप्त व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया वास्तव में यह है कि वह परमेश्वर से पूछे कि उसने उसके लिए यह सब कुछ किया, अतः उसे क्या करना चाहिए। हम यह भावना धर्मशास्त्र में अनेक स्थानों में देखते हैं। हम भजन संहिता 116 उसके 12 में पढ़ते हैं, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। प्रेरित पौलुस ने विश्वासियों को लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 पद। यह आदेश नहीं है, पौलुस कहता है विनती करता हूँ। उसने अन्य पत्री में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार का कारक है सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। इससे क्या होता है, क्या इसमें किसी काम की अनिवार्यता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम इसे पाते हैं। निश्चय ही मीका की स्मृति में यह अध्याय होगा जब उसने लिखा, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका 6 अध्याय उसका 8 पद। एक आम विश्वासी परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा रखता है, वह परमेश्वर के साथ वाचा बांधना चाहता है, परंतु समस्या यह आती है कि परमेश्वर के समक्ष ऐसी क्या योग्य वस्तु है जिसकी वाचा परमेश्वर से बांधी जाए। एप्रेम साइरस ने लिखा, मैं अपने जीवन को नकारा हुआ कहता हूँ क्योंकि यह किसी लाभ का नहीं है। डेविड ब्रेनार्ड की पुकार है, काश मेरा प्राण ऐसा पवित्र होता जैसा वह है, वह ऐसा शुद्ध होता जैसा मसीह शुद्ध है और सिद्ध होता जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर की पुस्तक में ये मन भावन आज्ञाएं हैं जिनमें अन्य सब आदेश निहित है, और क्या मैं उन्हें तोड़ूं? क्या तुझे उल्लंघन करना चाहिए? क्या इस संसार में वास करते हुए मुझे उनकी उल्लंघन की आवश्यकता पड़ती है? हे मेरे प्राण, हाय हाय, मैं पापी हूँ। एक उधार प्राप्त पापी परमेश्वर को क्या दे सकता है? यह अध्याय इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि मन्नत मान ली जाए तो वह आदेशात्मक बन जाती है। नीति वचन 20 अध्याय उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। जानकारियां पहले एकत्र करना आवश्यक है जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो जाए कि आप क्या करने जा रहे हैं। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 4 से 6 पद में हम पढ़ते हैं, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलम्ब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कामों को नष्ट करे। प्रिय मित्र, कुछ मन्नत ऐसी थी जिनमें मनुष्य वचनबद्ध हो जाता था, जबकि ऐसी मन्नतें भी थी जिनसे मुक्ति संभव थी। इसराइल राष्ट्र के जीवन में मन्नतों का महान महत्व था। नाजीर की मन्नत भी थी जिसका विस्तृत उल्लेख गिनती की पुस्तक उसके 6 अध्याय में किया गया है। सबसे अधिक ध्यानाकर्षण मन्नत वह है जो यिप्ताह ने युद्ध में मानी थी, और हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 30 और 31 पद में, और यिप्ताह ने यह कहकर यहोवा से मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं तब जो कोई मेरे भेंट के लिए घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। और हुआ यह कि जब वह विजयी होकर घर लौटा तो उसकी पुत्री उससे भेंट करने घर से बाहर आई। उसने उसे होम बलि तो नहीं किया परंतु परमेश्वर के लिए पृथक कर दिया, जो न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 39 और 40 पद में स्पष्ट है। वह आजीवन कुंवारी रही। यही कारण था कि इसराइल की पुत्रियों के लिए यह प्रथा प्रचलित हो गई कि वे प्रति वर्ष 4 दिन यिप्ताह की पुत्री का शोक करें, क्योंकि इसराइल में स्त्री का अविवाहित रहना अनर्थ समझा जाता था। उसने उसे पूर्ण रूपेण परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। यह एक विवेकहीन मन्नत थी परंतु उसने उसे निभाया। यदि मन्नत तोड़ दी जाए तो पाप बलि और अपराध बलि चढ़ाना आवश्यक था। लेवियासा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 4 से 6 पद में हम पाते हैं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको आपकी मन्नत का उत्तरदायी मानता है। आज अनेक मसीही जन अपनी मन्नत को पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि आपके मन में कोई मन्नत पूरी करने की साहस नहीं है या आप परमेश्वर के साथ अपने व्यवहार को गंभीरता से नहीं मानते हैं तो आप दूसरी बार विचार करें कि आपको मन्नत मानना है या नहीं। मेरे विचार से आज अनेक मसीही जनों को दंड मिल रहा है और जैसा पौलुस कहता है कि अनेक सो भी गए हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको मन्नत मानने के लिए बाध्य नहीं करता है, यह आपकी अपनी इच्छा है। परंतु यदि आपने परमेश्वर के समक्ष वचन दिया है तो उसे पूरा करने के लिए समर्पित भी हो। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 21 से 23 पद में हम इसे पढ़ते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय की रूपरेखा को देखें। पहला है मनुष्य के विषय मन्नत या संकल्प, पद 1 से 8। दूसरा, पशुओं के विषय मन्नत या संकल्प, पद 9 से 13। तीसरा, घर के विषय मन्नत या संकल्प, पद 14 और 15। चौथा, भूमि के विषय मन्नत या संकल्प, पद 16 से 25। 5, मन्नत से पृथक प्रभु परमेश्वर की 3 अधिकृत वस्तुएं, पद 26 से 34। आइए हम सबसे पहले देखते हैं मनुष्यों के विषय मन्नत या संकल्प। लय व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से यह कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। प्रिय मित्र, यहाँ पर विशेष संकल्प का अर्थ है किसी मूल्यवान वस्तु को परमेश्वर के लिए अलग कर देना। आपको ध्यान होगा कि दाऊद दान में दिया गया खेत परमेश्वर के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हम दूसरा सामुएल की पुस्तक 24 अध्याय के 24 पद में पढ़ते हैं, राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमिंत की होम बलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया, क्योंकि मैं एक पुरोहित नहीं हूं और मेरी बातों को न्याय करना नहीं समझा जाएगा। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, आप कलीसिया में रहते हुए परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं जिसका आपके लिए मूल्य नहीं, तो परमेश्वर आप पर दया करें। आज आप पर दशमांश का बंधन नहीं है। इसराइल तो दशमांश देने पर बाध्य था, परंतु परमेश्वर ने हमें बाध्य नहीं किया है। हमें स्वेच्छा का दान अर्पण करना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के साथ निकृष्ट व्यवहार करते हैं या करेंगे, तो वह भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। अर्थात आप विश्वास योग्यता से चूक करेंगे तो वह भी आपको अनदेखा करेगा। प्रिय मित्र, किसी सफल व्यापारी से उसकी सफलता का भेद पूछा गया तो उसने कहा, परमेश्वर देता जाता है और मैं बांटता जाता हूँ। मैं जितना अधिक देता हूँ परमेश्वर उतना ही अधिक मुझे देता जाता है। यहाँ कहने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर हमें धनाने की आशीषों की प्रतिज्ञा देता है, अर्थात धनवान होने की आशीषों की प्रतिज्ञा करता है। उसके पास हमारे लिए विभिन्न आशीषें हैं। फिर भी मेरा विश्वास यह है कि हम में से कुछ गरीब हैं और आर्थिक संकट में हैं। इसका एक मुख्य कारण परमेश्वर के साथ हमारा व्यवहार है। एक मनुष्य मेरे पास आया और कुछ शेयर लाकर कहने लगा, शेयर बाजार बहुत अधिक गिर गया है, इसलिए मैंने सोचा कि उचित यही होगा कि मैं ये शेयर चर्च में दे दूं। परमेश्वर ऐसे दानदाताओं पर दया करे। हमें परमेश्वर को ऐसी वस्तु देना चाहिए जिसका कोई मूल्य हो। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय उसके 3 और 4 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इसलिए यदि वह 20 वर्ष वा उससे अधिक और 8 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 50 शेकेल का रुपया ठहरे, और यदि वह स्त्री हो तो 30 शेकेल ठहरे। मित्र, किसी मनुष्य के द्वारा मन्नत माने का अर्थ यह नहीं था कि उसे मंदिर में सेवा करनी होगी। मंदिर की सेवा के लिए लेवियों को अलग किया गया था। फिर भी सेवानिवृत्ति के लिए मूल्य चुकाकर उस सेवा को सेवा से मुक्त कराया जा सकता था। इस मूल्य को छुड़ौती धन कहते थे। 20 से 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति अधिक मूल्यवान समझा जाता था, क्योंकि वह अधिक कार्यक्षम होता था। कार्यक्षमता मनुष्य के मूल्य का मापदंड है। एक युवक सबसे अधिक कार्यभार करने की क्षमता रखता है, और एक स्त्री के कार्य का मूल्य कम था। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्त्री परमेश्वर के लिए अलग की जा सकती थी। मेरे विचार में यह एक प्रमाण है कि इप्तह ने अपनी पुत्री की बलि नहीं दी, परंतु उसे परमेश्वर के लिए अलग कर दिया और वह आजीवन अविवाहित रही। हन्ना ने भी अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए अलग करके अपनी मन्नत पूरी की थी। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मैंने वचन दिया था कि यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तुझी को समर्पित कर दूंगी। मैं अपना यह पुत्र तुझको देती हूँ। और उसने अपना वचन निभाया। क्या आपने कभी अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया है? क्या आपने अपनी संतान या अपने नाती पोते परमेश्वर के लिए समर्पित किए हैं? क्या आपने अपनी संपत्ति परमेश्वर के लिए अलग की है? परमेश्वर ने तो आपको ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी है, परंतु उसने कहा है कि आप यदि चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करें तो उसका मान रखें। लय व्यवस्था 27 उसके 5 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष हुआ उससे अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शेकेल और लड़की के लिए 10 शेकेल ठहरे, और यदि उसकी अवस्था 1 महीने व उससे अधिक और 5 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 5 और लड़की के लिए 3 शेकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की व उससे अधिक हो और वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शेकेल और स्त्री हो तो उसके लिए 10 शेकेल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। यहां ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मूल्य उसके सामाजिक प्रतिष्ठा, धनान्य और मान सम्मान पर निर्भर नहीं था, उसका मूल्य उसकी श्रम क्षमता पर निर्भर करता था। देखिए परमेश्वर ने गरीबों के लिए कैसी उत्तम व्यवस्था की थी जिससे कि वे इस स्वेच्छा सेवा में सहभागी हो सकते थे। प्रिय मित्र, याजक मनुष्य की भुगतान क्षमता के आधार पर निष्पक्ष एवं यथार्थ मूल्य निर्धारित करता था। यीशु ने उस विधवा की दमड़ी का मूल्य स्वर्ग में धनवानों के बहुमूल्य दान से भी अधिक ठहराया था। मन्नतों के मान्य का एक और विशेष गुण था, मानवीय व्यवस्था के अनुसार किसी की सेवाओं के बदले मूल्य चुकाया जाता था, परंतु मन्नतों के नियम के अनुसार यह व्यवस्था के विपरीत था। इसमें मनुष्य को परमेश्वर की सेवा करने के लिए कुछ देना पड़ता था। परमेश्वर की सेवा करना सौभाग्य है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पशुओं के विषय में संकल्प। लय व्यवस्था 27 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु कोई यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा, वह उसे किसी प्रकार से न बदले, न तो वह बुरे की संति अच्छा और न अच्छे की संति बुरा दे, और यदि वह पशु की संति दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे। प्रिय मित्र, जब मैं एक गांव में सेवा कर रहा था तो उस गांव के एक व्यक्ति ने मुझे अपने साथ अपने खेत में ले गया और मुझे एक बछड़ा दिखाया। उसने मुझे बताया कि वह बछड़ा उसने परमेश्वर को दे दिया है। मैं आपको सच कहता हूं कि वह बछड़ा देखने में ऐसा लगता था कि वह जीवित नहीं रह पाएगा। मेरी समझ में आया कि उसके दान देने का कारण भी यही था। आगे चलकर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वह बछड़ा पुरस्कार विजेता हुआ। अब वह व्यक्ति कहने लगा, मेरे विचार में मुझे यह बछड़ा अपने ही पास रख लेना चाहिए था, मेरे पास दूसरा पशु भी है, मैं परमेश्वर के लिए वह पशु दे दूंगा। उसने एक दूसरे बछड़े को बेचकर पैसा कलीसिया को दे दिया और अपने इस दान से मन ही मन प्रसन्न हुआ। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर कहता है अदल बदल मत करना, यदि आपने परमेश्वर से मन्नत मानी है तो उसे पूरा करना। हनन्याह और सफीरा के पाप को स्मरण रखें, उन्होंने अपनी भूमि बेच दी कि प्रभु के लिए उसकी आय दे दें, परंतु उन्होंने उसका एक भाग रख लिया और पत्रस ने कहा कि वह तो पूरा ही उनका था, परंतु उन्होंने उसे परमेश्वर को दे दिया था तो उन्हें उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए था। उन्होंने स्वेच्छा से संकल्प किया था और उसमें से चोरी करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे प्रियो, हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह आज भी होता है। यदि आपने परमेश्वर से किसी बात की प्रतिज्ञा की है तो उसे पूरा करें, क्योंकि वह उसके लेख में डाल दिया जाएगा। हम जिस परमेश्वर से व्यवहार करते हैं वह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय उसके 11 से 13 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे, तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे, और यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका पांचवा भाग और बढ़ा कर दे। प्रिय मित्र, संकल्प में अशुद्ध प्राणी रखा जा सकता था परंतु उसे बलि नहीं किया जा सकता था। ऐसे प्राणी का मूल्य याजक निर्धारित करता था और उस मूल्य का पांचवा भाग दंड स्वरूप उसमें जोड़ा जाता था, क्योंकि वह अशुद्ध प्राणी था और उसे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता था, अतः इस प्रकार से वह उसे छुड़ाता था। आइए अब हम आगे बढ़ें और घरों के विषय में संकल्प को देखें। लय व्यवस्था 27 के 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे, और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसका मोल ठहराया है उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ा कर दे, तब वह घर उसी का रहेगा। यहां पर हम देखते हैं किसी मनुष्य की सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति उसका घर होता है, वह उसे परमेश्वर को दे सकता था। मेरे विचार में विश्वासी अपना मकान वरन अपनी संतान भी परमेश्वर को समर्पित करके दे सकता था, जो अच्छा है। आप उस घर में रह सकते हैं और परमेश्वर को किराया दे सकते हैं, क्योंकि अब वह उस मकान का स्वामी है। यदि वह किराया नहीं देना चाहता तो वह उस मकान के मूल्य में उसका पांचवा भाग जोड़कर उसे छुड़ा ले। यह पांचवा भाग उसका एक प्रकार से दंड था। एक बार किसी ने मुझे उसके घर के समर्पण कार्यक्रम हेतु बुलाया। उसने कहा कि वह चाहता था कि उसका घर परमेश्वर की संपत्ति ठहरे और मैं जब भी चाहूं वहां आ सकता हूं। मेरे पास तो अपना घर था और मुझे उसके घर शरण लेने की आवश्यकता नहीं थी। वह यदि वास्तव में उस घर को परमेश्वर को दे चुका था तो उसे उसका किराया परमेश्वर को देना था। आप मुझसे पूछेंगे कि वास्तव में ऐसा हो सकता है या नहीं। मेरे विचार में ऐसा ही है। हम स्वेच्छा से परमेश्वर के समक्ष संकल्प करते हैं, तब हम प्रमाणित करते हैं कि हम मन की सच्चाई से समर्पित हैं या नहीं। आइए हम आगे देखें। भूमि के विषय में संकल्प, लय व्यवस्था 27:16-25 पद लिखा है, फिर यदि कोई अपने निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल उसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा। जितना भूमि में होमेर भर जौ पड़े उतना का मोल 50 शेकेल ठहरे। यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। और यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहें उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपए का हिसाब करे। तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ा कर दे, तब खेत उसी का रहेगा। और यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे, वह उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे को कभी न छुड़ाया जाए। परंतु जब वह खेत जुबली वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत की नाई यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वह याजक की ही निज भूमि हो जाए। फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का ना हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। और जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। और जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकेल के हिसाब से ठहरे, शेकेल 20 गेरा का ठहरे। प्रिय मित्र, यह एक जटिल पद्धति है। भूमि परमेश्वर की ही है तो भी वह परमेश्वर को समर्पित की जा सकती थी। भूमि का मूल्य उसकी उत्पादन क्षमता और जुबली वर्ष के संबंध में निर्धारित किया जाता था, क्योंकि भूमि जुबली वर्ष में उसके स्वामी को लौटा दी जाती थी। यदि कोई अपनी भूमि जुबली वर्ष के पूर्व अति निकट समय में दान देना चाहता था तो उसका मूल्य जुबली वर्ष के संबंध में आंका जाता था। सच बात तो यह है कि ऐसा मनुष्य अत्यधिक स्वार्थी हो जाता है। उधार में ली हुई भूमि परमेश्वर को समर्पित नहीं की जा सकती थी। परमेश्वर मनुष्य के मन को जानता है। अब हम आगे देखते हैं, संकल्प से पृथक तीन वस्तुएं अधिकृत रूप से परमेश्वर की हैं। लय व्यवस्था 27:26-27 पद में लिखा है, पर घरेलू पशुओं का पहलौठा जो यहोवा का पहलौठा ठहरा है उसको तो कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो चाहे वह भेड़ व बकरी का बच्चा, वह यहोवा ही का है। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका पांचवा भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है, और यदि वह न छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। मित्रों, हम देखते हैं कि मनुष्य हो या पशु, पहलौठा सदैव परमेश्वर का था और उससे मन्नत में परमेश्वर को समर्पित नहीं किया जा सकता था। परमेश्वर अपने अधिकार की मान्यता के विषय में समझौता नहीं करता है। लय व्यवस्था 27:28-29 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु न तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मनुष्यों में से जो कोई अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। दूसरे वर्ग में वे वस्तुएं आती हैं जो पहले मन्नत में परमेश्वर को समर्पित की जा चुकी हैं, अर्थात किसी वस्तु का समर्पण दो बार नहीं किया जा सकता है। यहोशू 6 में हमने देखा कि यरीहो परमेश्वर को विनाश के निमित्त समर्पित कर दिया गया था। आका ने विनाश करने के लिए नियत वस्तु घर में रख ली थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसका सर्वनाश हुआ। देखिए यहोशू 6:7 आगे हम देखते हैं, लय व्यवस्था 27:30-33 पद में लिखा हुआ है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवा भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए, और गाय बैल और भेड़ बकरियां, निदान जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उसको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे, और वह कभी छुड़ाया न जाए। प्रिय मित्र, यहाँ पर हम दशमांश भी परमेश्वर का है के विषय में देखते हैं, और उसे मन्नत में समर्पित करना वर्जित था, अर्थात मना था। आगे हम लय व्यवस्था 27:34 में पढ़ते हैं, जो आज्ञाएं यहोवा ने इसराइलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी वे ये ही हैं। यह पद लय व्यवस्था की पुस्तक का अंतिम पद है, वरन उसकी सारांश है। यह पद सिद्ध करता है कि अध्याय 27 लय व्यवस्था की पुस्तक का परिशिष्ट नहीं है, वरन उसका अभिन्न भाग है। व्यवस्था के अधीन मनुष्य के लिए परमेश्वर के विचार हैं। आज मनुष्य को परमेश्वर के अनुग्रह का आभारी होना चाहिए। पौलुस तीतुस को लिखते हुए कहते हैं, तीतुस की पत्री 2:11-14 में, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। प्रिय मित्र, यह वचन मेरे लिए और आपके लिए भी है कि हम परमेश्वर के निकटता में रहकर भले कामों में सरगर्म हो जाएं। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे और आपकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे। कृपा पा।